न्यू इंडिया समाचार।
नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस पखवाड़े हम आपसे 16 से 31 मार्च के अंक की चर्चा कर रहे हैं। पिछले सप्ताह और कल के प्रसारण में हमने इस अंक की आवरण कथा और व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की थी। व्यक्तित्व की कड़ी में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की जयंती पर राष्ट्र का नमन पर चर्चा हो चुकी है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि की बात भी आपसे हो चुकी है। अब हम भारत रत्न से सम्मानित पीवी नरसिंह राव, प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह की प्रेरक गाथा की बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि हमारा यह अंक केंद्रीय चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने से पूर्व ही प्रकाशित हो चुका है, लेकिन इसके रेडियो प्रसारण में हम इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए लगी आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करने को प्रतिबद्ध हैं। इसलिए वर्तमान केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान की विकास की उन योजनाओं की चर्चा नहीं करेंगे जिसका विवरण इस अंक में समाहित है। श्रोताओं, आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, दांडी यात्रा हो, जन जन का संकल्प बन गया था। देश के लिए आज वैसे ही विकसित भारत का संकल्प मील का पत्थर बन गया है। आजादी के कई दशक तक उस आजादी का एहसास अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाया था। अब आजाद भारत में विकसित भारत का संकल्प और उसे यथार्थ में बदलने की यात्रा देश के 140 करोड़ नागरिकों के प्रयास से चल रही है। लोकतंत्र का महापर्व यानी आम चुनाव उस यात्रा को सार्थक दिशा देने वाला होगा। एक ऐसे भारत के निर्माण की संकल्पना आगे बढ़ रही है जहां लोगों को गरीबी से मिले मुक्ति, भ्रष्टाचार से मिले मुक्ति, जातिवाद से मिले मुक्ति, सबको समान लाभ दिलाने के लिए तुष्टीकरण से मिले मुक्ति, सांप्रदायिकता के आधार पर भेदभाव से मिले मुक्ति। एक ऐसी यात्रा जहां सबका एकमात्र समान लक्ष्य हो विकसित भारत। उस सपने को साकार करने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों ने न केवल सपना देखा है बल्कि उसे यथार्थ बनाने के लिए सारथी के रूप में चल पड़े हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देश की आजादी के लिए था, तो विकसित भारत का संकल्प राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि की सोच और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की प्रेरणा से देश के हर नागरिक को आत्मसम्मान से भरा जीवन देने और राष्ट्र को नए सिरे से परिभाषित कर दुनिया में उसे सिरमौर बनाने की बन गई है अमृत यात्रा। राष्ट्र प्रथम और अंत्योदय के मंत्र से विकास रथ कैसे बना विकसित भारत का विश्वास रथ, यही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। इसकी चर्चा हो चुकी है, अब आज हम बात करते हैं उन महान विभूतियों के बारे में जिन्हें भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के अवसर पर की गई है।
राष्ट्र निर्माण में जिनके योगदान को करते हैं याद, उन्हें मिला है भारत रत्न सम्मान। किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र सेवा करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया। इसी वर्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। आइए इन महापुरुषों के बारे में जानते हैं। किसानों के अधिकार और कल्याण को समर्पित रहे चौधरी चरण सिंह। हमारा सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है।
चौधरी चरण सिंह का जन्म वर्ष 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। देश में कुछ ही राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने लोगों के बीच रहकर सरलता से कार्य करते हुए इतनी लोकप्रियता हासिल की हो। एक समर्पित लोक कार्यकर्ता एवं सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले चरण सिंह को लाखों किसानों के बीच रहकर प्राप्त आत्मविश्वास से काफी बल मिला। चौधरी चरण सिंह ने अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत किया और अपने खाली समय में वे पढ़ने लिखने का काम करते थे। जब भी मेहनती किसानों के अधिकारों की रक्षा करने की बात सामने आई तो वे मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने हाशिए पर खड़े लोगों के सशक्तिकरण के लिए भी अथक प्रयास किया। वह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में भी सबसे आगे रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह ने जीवन पर्यंत किसानों के हित के लिए संघर्ष किया। उनका मानना था कि समृद्ध किसान और सशक्त कृषि व्यवस्था ही उज्जवल भारत की नींव है। चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में 28 जुलाई 1979 को दिए राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था, भारत को कुदरत ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ के लोगों के पास महान संस्कृति की धरोहर है, उनमें बड़ी और लगातार मेहनत करने की क्षमता है। मेरा यह परम कर्तव्य होगा कि समान रूप से देश के सभी निवासियों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं, देश की नैतिक तथा आर्थिक शक्ति को बढ़ाने और जीवन को उन्नत करने के लिए भरपूर प्रयास करूं।
जिन्होंने भारत को बढ़ाया आगे, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी किया समृद्ध। हैदराबाद के करीम नगर के बंगरा गांव में 28 जून 1921 को जन्मे पीवी नरसिंह राव को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिन्होंने भारत की कमान तब संभाली जब देश गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। वे अनेक भाषाओं को जानते थे, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं बोल लेते थे। वे एक ओर भारतीय मूल्यों में रचे बसे थे तो दूसरी ओर उन्हें पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान का भी ज्ञान था। वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। साथ ही उनके जीवन का एक और पहलू भी है और वो उल्लेखनीय है, जो हमें जानना भी चाहिए। नरसिंह राय अपने किशोरावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। जब हैदराबाद के निजाम ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, तब उनके खिलाफ आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। उस समय उनकी उम्र केवल 17 साल थी। छोटी उम्र में ही नरसिंह राव अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में आगे थे। अपनी आवाज बुलंद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते थे। नरसिंह राव इतिहास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे। बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से उठकर उनका आगे बढ़ना, शिक्षा पर उनका जोर, सीखने की उनकी प्रवृत्ति और इन सबके साथ उनकी नेतृत्व क्षमता, सब कुछ स्मरणीय है।
एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिंह राव ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की व्यापक स्तर पर सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद एवं विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए समान रूप से याद किया जाता है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिंह राव का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों का प्रतीक था, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसके सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया।
भारतीय कृषि को बदल, देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी की सुनिश्चित। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन भारत से प्रेम करते थे और चाहते थे कि हमारा देश और विशेषकर हमारे किसान समृद्धि के साथ जीवन यापन करें। वे अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली थे और किसी भी करियर का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन 1943 के बंगाल के अकाल से वे इतने द्रवित हुए कि उन्होंने तय कर लिया कि अगर कोई एक चीज जिसे वे करना चाहेंगे तो वो है कृषि क्षेत्र का कायाकल्प। बहुत छोटी उम्र में वे डॉक्टर नॉर्मन बारलॉग के संपर्क में आए और उनके काम को गहराई से समझा। 1950 के दशक में अमेरिका में उन्हें एक फैकल्टी के तौर पर जुड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे भारत में रहकर देश के लिए काम करना चाहते थे। आजादी के बाद पहले दो दशकों में हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे और उनमें से एक थी खाद्यान्न की कमी। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत अकाल से जूझ रहा था। इसी दौरान प्रोफेसर स्वामीनाथन की दृढ़ प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता ने कृषि सेक्टर के एक नए युग की शुरुआत की। कृषि और गेहूं प्रजनन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उनके अग्रणी कार्यों से गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऐसे प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर वाले राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया। इस शानदार उपलब्धि की वजह से उन्हें भारतीय हरित क्रांति के जनक की उपाधि मिली, जो बिल्कुल सही भी है। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने आलू की फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों से निपटने की दिशा में भी प्रभावी अनुसंधान किया था। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन के व्यक्तित्व का एक और पहलू भी है जो बेहद उल्लेखनीय है। वो इनोवेशन और मेंटोरशिप को बहुत बढ़ावा देते थे। जब उन्हें 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला तो उन्होंने इसकी पुरस्कार राशि का उपयोग एक गैर लाभकारी रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना में किया। उन्होंने अनगिनत प्रतिभाओं को निखारा और उनमें सीखने और इनोवेशन के प्रति जुनून पैदा किया। प्रोफेसर स्वामीनाथन एक संस्थान निर्माता भी थे। उन्हें कई ऐसे केंद्रों की स्थापना का श्रेय जाता है जहां आज वाइब्रेंट रिसर्च हो रही है।
हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत कृषि और किसानों के कल्याण में एम एस स्वामीनाथन की उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत द्वारा कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। हम एक प्रवर्तक और संरक्षक के रूप में उनके अमूल्य कार्य को भी पहचानते हैं और कई छात्रों के बीच सीखने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की है। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें समूचा देश जानता है, उनके दृष्टिकोण और विचारों की कद्र करता है। श्रोताओं, अब समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले अंक के साथ, जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे चुनाव के इसी महापर्व और 1952 तक के आम चुनाव की यात्रा के बारे में। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB India है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।